शिला कोई मत लेना, उन लोग गिरिराज जी के शिला भी पहनना। जब ये लिखा है काले गुरु वैष्णव के बोले, ब्रजवासी के बोले, बाहर लोग तो छोड़ा वजन है वही खाने लिए साथ में उठा। आज दिना करें काले कड़कड़ में जबे काले में कौन दूध गर्दा हो और तेरे खूब सावधान। पश्चिम देश के लोग और वेस्टर्न कंट्री रिकॉर्डिंग डिमांड टू टेक 4, 5, 6 गोवर्धन सीधा तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय यदि कोई उसने कामना व्यक्त करती संसार की, जैसे हमारा विवाह हो जाए, हमको बहुत धन संपत्ति हो जाए, हमारे लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाते, ये तो सहजी में दे देते हैं। इसलिए आजकल करोड़ों लोग गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं, विशेष करके एकादशी के महीने में और एकादशी से पूर्णिमा में जगह नहीं रहेगी खड़ी होने की गोवर्धन के चारों तरफ। लोग परिक्रमा करते हैं और कामना करते हैं लोग एक एक स्थान पर 108 बार प्रणाम करके आगे बढ़ते हुए कितने वर्षों में परिक्रमा करते हैं, किस लिए? वो धन संपत्ति या किसी चीज के लिए दुर्भागा है। कृष्ण के चरण में प्रेमा भक्ति गोपियों जैसी भक्ति नहीं मांगती, इसलिए वो दुर्भागा है। गिरिराज जी गोलोक वृंदावन में एक बार कृष्ण ने कहा था राधा जी से, मैं गोलोक में जाना चाहता हूं और आपको भी हमारे साथ में चलना है। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, जमुना नदी साथ जाए, गिरिराज गोवर्धन हो और सब जितने ब्रज की चीजें हैं वो सभी लोग जाएं, पहले वहां पर अवतार लें तब हम जाएं। इसलिए गिरिराज जी साधारण नहीं है, तो लोग वृंदावन की है, तो इनके संबंध में अभी विभिन्न वक्ता को वर्णन करेंगे, आप लोग श्रवण करें।
Somebody unlimited tonight, Sri Guru and Gauranga, we had a chance to stay more than 14 days in Vrindavan. In those 20 days, we went to many, many pastime forests of Krishna. And now, by the grace of Vrindavan and Krishna, we have come here to Krishna's dearmost, who fulfills all one's desires, Sri Giriraj Maharaj. And we will stay approximately 16 days here. We will visit all the main forests around here, like Chalupya, like Yavat, Shurikun, Beta, many, many places. But no one should take a Govindan Shila from here. To do so will destroy one's bhajan. If one desires a Govindan Shila, one should replace that Govindan Shila with an equal weight of gold after taking permission from the spiritual master, the Vaishnavas, and the Vrindavasis. And no one should walk upon the Giriraj, climb upon him. We should be careful that here we have no material desires. Many, millions and millions of people come here to perform paikram for the fulfillment of their desires, especially on the days from Ekadasi to Purnima, the full moon. There is not even room for standing here. And all are wanting something. They have desire for marriage, or my daughter should be married, or I should possess a new house, I should get a job. Some people even in one place perform 108 parikrams in one place, dandavats in one place. And for many years they perform this austerity. Why? Simply for the fulfillment of some material desires. But they are most unfortunate because they achieve it from the service of Sri Radha and Krishna. Devotee's Govardhan is always situated in Golok Vrindavan. So when Krishna said to Radhika, I will descend the world, I will go to Gokul. Then Srimati Radhika said, Krishna said, you should come with me. Srimati Radhika said, no. I will not go anywhere without Vipuna, without Giriraj, without the forest of Rajamandal. They should appear first in this world, then I will also go. So Giriraj is not ordinary. He is always situated in the spiritual world.
Yeah, I'm just a lot. someone Guru Bhaskar Muni, Asad Rukuti, Jatavati, Pranati, Gyanam, Kartam, Tadranda, Pasit, Pujani, Sanyasi, Vrinda, Vaishnav, Jan, Mahakam, Sajjana, Tatha, Vaino, Savitra, Vida, Pranam, Nividam. हम लोग मथुरा से चलते हुए मथुरा की परिक्रमा के पश्चात वृंदावन में आए और वृंदावन से हम लोग ब्रज गोकुल की यात्रा की और गोकुल से वृंदावन होते हुए माघ वन, भाटी वन, भद्र वन, बहुला वन और उधर में जो कि मधु वन, ताल वन, कुमुद वन, बहुला वन, महावन, लौह वन, माघ वन, बेल वन, भाग्य वन, भद्र वन, इन सभी वनों में हम लोग गए। जबकि वहां की लीला कथाओं को श्रवण किया तो उसके पश्चात आज गुरु गोविंद की अपार करुणा से हम लोग गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में से गिरधारी गौरी मठ में हम लोग समुपस्थित किए। जबकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बात कहते हैं वैकुंठाद यशोधरा वैकुंठाद वैकुंठाद जगनो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव वृंदारण्य मुदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धनम राधा कुंड में हापि गोकुल पदे प्रेमामृत प्लावना कुर्यात् अस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कह। बोले कि वैकुंठा जरितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव वैकुंठपुरी अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ ये मधुपुरी जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और वहां पर देवकी वसुदेव के अंदर ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों प्रकार के भाव विद्यमान थी और उस ऐश्वर्य भाव के बीच में भी माधुर्य भाव के कारण भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर प्रकट अपनी प्रकट लीला की और ब्रज गोकुल में वहां उन्होंने जन्म लिया। और जहां ब्रज गोकुल जो कि केवल माधुर्य की भूमि प्रेम रस का समुद्र उस माधुर्य की भूमि में भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल होकर करके लीलाएं की है। इसलिए वात्सल्य रस की लीला भूमि हुई ब्रज गोकुल और वहां से चलते हुए जबकि आगे वृंदावन में आए तो ब्रजवासियों ने छठी करा में निवास किया और निवास करते हुए कृष्ण बलराम दोनों वत्स पालक बने और जल की वन वन में गोचरण निमित्त गए वन विहार करने लगे। वृंदावन आदि में लीलाएं भी है। साढ़े तीन वर्ष से लेकर के चार वर्ष पांचवे वर्ष में उन्होंने ब्रह्म मोहन लीलाएं की बृहद वन वृंदावन में और जहाँ की ब्रह्म मोहन लीला के द्वारा सभी वत्सल सरस्वती माताओं के और गौओं के वत्सल भाव का उन्होंने आस्वादन किया। छठवें वर्ष में गोपियों का चिरहरण करते हुए उनके मनोरथ पूर्ण करने का संकल्प दिया वचन दिया। सातवें वर्ष में उन्होंने गिरिराज गोवर्धन का धारण किया और आठवें वर्ष में उन्होंने वृंदावन में रास रचाई जो कि शारदीय रास का वर्णन हुआ है और वही आठवें वर्ष में काली दमन लीला हुई है वृंदावन में। ऐसे ऐसे और जितनी भी लीलाएं हैं वन विहार इत्यादि में इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सखाओं के साथ में पौगंड रस का आस्वादन किया। उसके पश्चात पौगंड के पश्चात आता है कैशोर जहाँ पर नव कैशोर की लीलाएं हैं और वन कैशोर लीला वृंदावन में प्रकाश होते हुए फिर वृंदावन से चल करके गोवर्धन में आया। इसलिए हमारे गोस्वामी पादों ने कहा कि वृंदावन से भी बढ़ करके रमनाथ तत्रापि गोवर्धनम जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रमन किया आनंद विहार किया कैशोरे कलयान सफली करती कुंजे कलयान हरि जहाँ पर गोवर्धन की कंदरा कंदराओं में अल्पुंज कुंज में ब्रज गोपियों के साथ में लीला विनोद करते हुए उन्होंने 200 रुपया उसको सफल किया और साथ ही साथ प्रेम अनुराग वाय होकर के और भी बढ़ता चला गया। जहाँ ब्रजगोपियों का प्रेम स्नेह मान प्रण राग अनुराग भाव महम की स्थिति को प्राप्त करते हुए वो और भी चमत्कार पूर्ण हुआ। श्री कबीराजी गोस्वामी बाद ने कहा कि राधा और कृष्ण का परस्पर प्रणय, ये जो प्रणय अवाटा सुगंधि उद्वर्धन, एक दूसरों के प्रति प्रेम प्रीति विलास और स्नेह संबंधन, ये सुगंधि उद्वर्धन अवाटा के जैसे ही चारों ओर फैल गया है। सभी ब्रजवासी जानिए कि कृष्ण राधा को प्यार करते हैं और राधा कृष्ण को प्यार करती है, परंतु यह विलास के रूप में बढ़ता हुआ और भी प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। जहाँ पर रास और रवा ना हम रवनी, यह भाव लेते हुए एक दूसरों में आनंद और प्रेम की पराकाष्ठा पर आए। इसलिए ये गीताज गोवर्धन जो कि रमणा तत्रापि गोवर्धनम, जहाँ पर प्रमुद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रजयति नवजूनो दंदमस्मीन मंदा, जहाँ राधा कृष्ण के प्रमद मदन विजयी लीला कंदरा कंदराओं में हुआ। आज जैसे हम लोग गए तो बैठा चंद्र सरोवर आदि स्थानों में जहाँ पर शांति राज से भी बढ़ करके बासंती राज की चमत्कारिता दिखलाई और उसमें राधा जी के प्रेम की पराकाष्ठा उनकी महिमा को सर्वोत्तम रूप से घोषित कर दिया। ऐसे जो गिरिराज गोवर्धन जी, ये गिरिराज गोवर्धन अभी गुरु जी ने बताया और आदेश भी दिया, ये गिरिराज गोवर्धन आए कहां से? हम लोग सुनते आए हैं वैष्णवों से कि ये द्रोणाचल का पुत्र है। जैसे भौतिक जगत में लीलाओं में कहीं किसी का जन्म होता है, कोई किसी रूप में आते हैं, तो ऐसे वृत्त सिद्ध परिकरों का आना हुआ। तो ये गिरिराज गोवर्धन तो ये राधा जी का हृदय स्वरूप जहाँ मन से प्रकट हुआ है और ऐसे ऐसे वर्णना होती है और नित्य धाम में नित्य ही विराजमान है। परंतु जब प्रकट रूप में देखा जाता है तो इसकी एक समय द्रोणाचल के पुत्र भूत कर गया है। और जबकि हिमालय में द्रोण पर्वत और उसमें द्रोण पर्वत के पुत्र रूप में गिरिराज गोवर्धन की बड़ी प्रसिद्धि रही। तो काशी के ऋषि कुलस्थ, काशी के रहने वाले कुलस्थ ऋषि घूमते घामते हुए जो बल से जबकि हिमालय पर पहुंचे थे, द्रोण पर्वत के वहां पर पहुंचने से उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, अभिनंदन किया। इसके पश्चात जब वे लौटने की तैयारी में तब बोले कि यहाँ तो आपके बहुत से पर्वत मालाएं हैं, हमारे काशी में वहां कोई पर्वत नहीं है, हमें एक पर्वत माला चाहिए जिससे कि हमारे आश्रम की शोभा बढ़ जाए और बड़ी हरियाली और सुंदर सुहावना लगे लगे, हमें एक पर्वत चाहिए। उस समय पहले युग में क्या होता था, सभी पर्वत आकाश में उड़ते थे, उनके पंख हुआ करता था और ये सभी पर्वत घूमते फिरते थे। परंतु पीछे से जा करके देवराज इंद्र ने जबकि पर्वतों के पंख काट दिए बजकर के प्रहार से, जो जहाँ थे वही रह गए, अब कोई इधर उधर नहीं जाते। तो ऐसे सभी सुना जाता है। तो द्रोण पर्वत का पुत्र गिरिराज गोवर्धन देखने में बड़ा सुंदर सुहावना और हरियाली से युक्त, यह देखकर के कुलस्थ ऋषि को बड़ी इच्छा और लोभ हुआ। तो उस समय कुलस्थ ऋषि जी ने उनसे प्रार्थना की, उन्होंने कहा यह मैं क्या कर सकता हूँ, यह आप ही पूछिए उनसे, गिरिराज यदि जाना चाहे वे जा सकते हैं, आपके आश्रम की शोभा बढ़ाए, हमें कोई मना नहीं है। तो कुलस्थ जी ने गिरिराज से पूछा, कहा कि हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाने के लिए तुम्हें चलना होगा? वे बोले मैं जा सकता हूँ एक शर्त पर, एक तो मुझे ले जाना पड़ेगा, दूसरी बात उनको जहाँ कहीं रख देंगे वहीं से मैं एक तिल भर नहीं हटूंगा, पहले ही आऊंगा। तो बोले कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही करूंगा। अपवित्र अवस्था में छू भी नहीं सकते, तो ये सारी बातें थी। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं है। जबकि उन्होंने तैयार कर ली, सारी तैयारी करके जब पर्वत को उन्होंने हथेली पर उठा लिया, जो बल से आकाश मार्ग से आ रहे थे, आते आते रास्ते में जबकि ब्रजभूमि के ऊपर गिरिराज गोवर्धन जी आ रहे, उस समय उनके पूर्व स्मृति सारी जाग उठी। अरे ये भगवान कृष्ण की लीलाएं होंगी, बहुत शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, फिर लीलाएं करेंगे, मैं उनकी लीला भूमि छोड़ करके नहीं जाऊंगा, प्रभु आप हमारी रक्षा करें, आपके स्थान छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतने में अचानक कई वक्रम से उनको भारी जनसंख्या लग गई। तो उस समय जब भी जनसंख्या लगी तो आप क्या करें, रोमन ऋषि जी पुरुष ऋषि जी अब आकाश मार्ग से नीचे उतर आए, आकर के धरती पर गिरिराज को रख दी, रख करके जनसंख्या के लिए चले। कुछ देर बाद जब जनसंख्या करके उठ के आए, हाथ इतना दिन धोया धो करके फिर आए, गिरिराज जी को उठाना चाह तो उठे ही नहीं। जब गिरिराज जी उठे नहीं, बोले अरे गिरिराज तुम क्यों नहीं उठता है, क्यों नहीं जाता है जो? बोले मैंने तो वचन दिया आपको कि आप एक बार जहां कहीं रख देंगे मैं वहां से तीन बार नहीं हटूंगा, क्या तुम नहीं चलेगा? बोले नहीं जा सकता, जो आप अपने वचन को पूरा कीजिए, आपने रख दिए तो रख दिया। बोले मुझे लगन सत्ता लग गई तो क्या हो सकता है इसमें? बोले कोई बात सुनवाई नहीं होगी। ऋषि और बिगड़ गए, बिगड़ करके बोले कि जा तीन बार नहीं हटेगा, तिर तिर तुम बैठ जाएंगे, प्रतिवर्ष तिर तिर बैठ जाएगा। बोले कि वो मंजूर है, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। जब वे नहीं गए तो बोले तिर तिर का अभिशाप उन्होंने ग्रहण कर लिया, परंतु ब्रजभूमि छोड़कर जाने का उन्होंने केंद्रित मात्र मन नहीं बनाया। उस समय पुलस्त ऋषि तो चले गए, परंतु गिरिराज जी सदा के लिए यहाँ विराजमान रहे, भले ही कालक्रम से तिल तिल करके बैठते जा रहे हैं या बैठ भी रहे हैं, फिर भी कृष्ण के स्मरण में वे निरंतर डूबे रहे हैं। जहाँ पर भगवान कृष्ण ने लीलाएं की और गिरिराज जी की महिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने देवराज इंद्र के दर पर चूर्ण करने के लिए गिरिराज गोवर्धन जी को उन्होंने पूजा भी की, उनकी महिमा बढ़ाई, और साथ ही गिरिराज जी को बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर उठा दिया, और साथ ही तक अपने अंगुली पर धारण करते हुए उनकी महिमा की घोषणा कर दी। और इसके पश्चात सभी घटनाएं सबको पता है। जबकि गिरिराज इंद्र आकर के क्षमा मांगने लगे, गोविंद नाम से आकाश गंगा के पानी से उन्होंने अभिषेक भी किया। गोविंद गोती सुरारती हर अवतार, जो ब्राह्मणों के गायों के भक्तजनों के ब्रजजनों की रक्षा करने वाले जो गोविंद है, और ऐसे जो अवतीर्ण हुए हे गोविंद आप हमारी रक्षा करें, हमें क्षमा कर। इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की। ऐसे ये गिरिराज जी है जहाँ भगवान कृष्ण के द्वारा परकोण पर उत्तीर्ण होने से उठे हुए होने से देवराज इंद्र के वज्र के प्रहारों को हजारों प्रहारों को फूलों के समान गिनती में उड़ा दी, चाहे वज्र से भले ही टुकड़े टुकड़े बन जाए। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, सभी पत्थर को पूरा के पूरा दिखता है, गिरिराज जी बहुत टुकड़े टुकड़े दिखते हैं। बोले देवराज इंद्र के प्रहार से भले ही टुकड़े बन जाए, फिर भी गिरिराज जी कृष्ण जी तर कमल पर विराजमान होने से वे इस प्रकार आनंद में डूबे हुए, उनके आनंद के एक कण को भी बिगाड़ नहीं सका। इस प्रकार जो कृष्ण आनंद में सदा सर्वदा डूबे हुए, जो स्वयं गिरिराज जी कृष्ण की राधा माधव की सेवा करने के लिए निरंतर प्रस्तुत थे, आज भी ब्रज भर के प्रसिद्ध जागृत देवता के रूप में जो विराजमान, ऐसे गिरिराज जी की आज तलहटी में हम सभी लोग आए हैं, उनके शरण में उनके चरणों में हम नित्य नमन करते हैं, और उनकी कृपा की भिक्षा करते हुए आज हम उनके चरण कमल की वंदना करते हैं। वंशाल पवित्र कृपा
सप्ताहि वार्षिक हस्त फलुभे वृंगायमानं बलमूल कंदराय संसेव्यमानं हरिमात्म वृंदकाय गोवर्धना गोवर्धनो मे शिरसा नमामि गोवर्धनो मे शिरसा नमामि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे By the avaitukic kripa, the causeless mercy of Sri Guru and Sri Gauranga under the guidance of our beloved Gurudev, Om Vishnupad Astro Tarasata Sri Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and our Rupa Duga Guru Bharata, we are so fortunate on our Prajamandala Parikrama to come to this highest of all places in all of Prajamandala, Sri Giriraj Gauranga. So the glories of Giriraj Govardhan are actually unlimited because Sri Giriraj Govardhan is actually an expansion of Sri Krishna himself. He is one in tattva with Sri Krishna. But at the same time, Sri Giriraj Govardhan is an eternal associate of Sri Krishna from the transcendental spiritual world, Goloka Vrindavan Dham. And there, he is serving Krishna and Krishna's associates, the cows, the gopas, the gopis, eternally serving them by providing all the necessary paraphernalia for their sweet, amorous pastimes and transcendental leelas, which are performed at all directions around Giriraj Govardhan. So he is the eternal associate of Radha and Krishna, and he has descended into this world to assist Lord Krishna's pastimes in the material world. So how Giriraj Govardhan came into this world, there is only a leela, a pastime. But actually he is the eternal associate. But nevertheless, in the Puranas, in the Adi Varaha Purana, there is one story that describes how Giriraj Govardhan appeared here in Braja. So actually Giriraj Govardhan is the son of Dronachala in the Himalayan mountains. And at the time of Lord Ramachandra, the Treta Yuga, when Ramachandra was going to build a bridge to span across the Indian Ocean to Lanka, and at that time he was assisted by the monkey army who were bringing boulders and stones and sticks and everything so that they could build a bridge and walk across. So Hanumanji, the great servant of Lord Ramachandra, he became very, very inspired to bring this Giriraj Govardhan from the top of the Himalayan mountains. So he placed Giriraj Govardhan on his hand and he began to fly in the air to render this favor to Lord Ram. And as he came over this area of Rajmandala, holding Giriraj Govardhan in his hand, at that time he heard an aerial voice telling him that, oh, now the bridge has been completed, there is no more need for any more boulders or rocks to be brought. So at that time, Giriraj Govardhan, by Hanumanji's assistance, was placed down here, exactly where he stands now, in Rajmandala. And Giriraj Govardhan remained here all through the Yugas, up to Dwapara Yuga, when Sri Krishna appeared here and performed all his pastimes in this area. And at the same time, in the Garga Samhita, there is another story which is related, because in different kalpas, different pastimes of the Lord take place. So, also, there is one great rishi, Pulastya Rishi. And Pulastya Rishi used to perform his meditations and all of his tapasyas in Kashi. And when he was visiting Dronachal, there he saw the son of Dronachal, which is Govardhan. And he saw how beautiful, how sweet was the atmosphere when he was there on Giriraj Govardhan, and there were such beautiful waterfalls, and it was a very inspiring atmosphere with the fragrance of flowers, beautiful forests everywhere. So he requested to Dromacharya that, please allow your son to come and be at my ashram so that I could perform my meditations. So Dromacharya agreed, but he was also somewhat frightened that the great Pulastri Rishi, very powerful mystic Rishi, would curse him. So he agreed. And Giriraj Govardhan himself also agreed, but on one condition, that as he is carrying him through the air, if he puts him down in any place for any reason, then he will stay there. So Pulastri Rishi very happily accepted this condition, and he began to lift Giriraj Govardhan on his hand with his mystic powers, and he began to fly through the air. Now when he came here to this area of Braj Mandala, Giriraj Govardhan, he understood that this was his place to stay. And Giriraj became very, very heavy, so that the Rishi was not even able to hold him up any longer. And finally the Rishi came down and placed Giriraj down on the earth here in this place. And then the Rishi went to take his bath and perform his anik, chanting his mantras. And then when he came, he returned. Now he again requested Giriraj to come upon his hand. But at that time, Giriraj Govardhan reminded him that he had already made a promise and agreed that he would not be lifted up again after he was put down. And when he told this to the Rishi became very upset, and the Rishi cursed Giriraj. Oh, all right, then you will stay here, but you will constantly be shrinking and shrinking and shrinking. Every single year, the size of one mustard seed, you will shrink down. So Giriraj Govardhan was very happy that now he would be in the land of Krishna's pastimes. So Giriraj happily stayed there, and Pulastri Rishi left. So actually Giriraj Govardhan, we can see now, after 5,000 years plus, Giriraj Govardhan has shrunken down. But Srila Gurudev is telling us in his Braj Mandala Parikrama book that who can actually say whether it is because of this curse of the Rishi, or whether it actually is because Giriraj Govardhan, he is feeling great, great separation from Sri Krishna after he performed his transcendental pastimes here in Braj Mandala. So, Srila Rupa Goswami, in Sri Upadeshamrita, he explains to all the sannikas that if you want to perform this bhajan to attain the service of Radha and Krishna in Braja, then you should live in Braja. You should be residing in the land of Braja Vrindavan. And there, under the guidance of pure Vaishnavas, you should perform your transcendental Harinam Seva Bhajan. So, in the next verse after that, then Srila Rupa Goswami is explaining where is the best place to perform in all of Braj Mandala. And there he gives a comparative analysis. He says, Vaikuntach janito varahmanupuri tatrapi ratso sabat vrindaranya mudara pani ramanat tatrapi govardhana radha kunda vihapi gokula pate prelmam rita plavana kurya asya virajato giridate sevam videhi nukha. Here he says, Vaikuntach janito varahmanupuri. In comparison with the transcendental spiritual world of Vaikuntha lokas, the transcendental land of Mathura, Madhupuri, it is far superior to that because Sri Krishna took his birth there. According to Srimad Bhagavatam, he was born there. And in comparison with Madhupuri, then the land of Vrindaranyam, the transcendental forest of Vrindavan, is superior because Tatrapi Rasa Utsavat, the great Utsav, the festival of Ras Leela, the Maha Leela, took place there on the banks of the Jamuna River at Kamshivat. But superior to that place is Govardhan. Why? Because it was held on the hand of Sri Krishna for 7 days and 7 nights. This pastime took place here, and also in the land of Giriraj Govardhan, being part of Giriraj Govardhan. The two kundas, Shyama Kunda and Radha Kunda, are situated there. And between them, Radha Kunda is radiant, supremely glorious amongst any other places. And that is situated in Govardhan. Actually, it is compared, the Shyama Kunda and Radha Kunda are compared to the two eyes of a peacock. Because Giriraj Govardhan, his shape is also like a peacock, and sometimes also compared to like a cow. How the cow takes his head, rests its head within its belly, like that. So the two eyes of the peacock is Giriraj Govardhan. Srila Raghunath Das Goswami also compares Shyama Kunda and Radha Kunda and Giriraj Govardhan to the fresh tilak on the face of all of Braj Mandala, which is decorating Braj Mandala. So in this place is so glorious. Our acharyas have glorified Giriraj Govardhan to show us that here, amongst all the pastimes of Radha and Krishna's Leela, especially in their Basanti Ras Leela, which was performed here in Giriraj Govardhan, in the forest surrounding Govardhan, that Leela is the topmost supreme Leela. And there, Sri Krishna tasted the topmost Ras in the association of Srimati Radhika and the Braja Gopis. So the glories of Giriraj Govardhan will be understood day by day as our beloved Gurudev leads our parikrama and our harikatha and shows us that we have become so fortunate to come here under his guidance in his association and to worship Giriraj Govardhan.
হনুমান বলেছিলেন এইটা বলতে পারো আরো হনুমান এনেছিলেন অন্যান্য যা শাস্ত্র আছে ओम ज्ञान निराम दस ज्ञानां जन सलाया चक्रो ओर मिलितम जय तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে সর্বপ্রথম শ্রী গুরুদেব শ্রী কৃষ্ণ বিষ্ণুপাদ হরষোদশ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি স্বরূপ সিদ্ধান্ত গোস্বামী মহারাজ অনন্তপুরি সাক্ষাৎ ভগবত প্রণাম তৎপশ্চাৎ শিক্ষা গুরুদেব উপস্থিত হুয়ে গিরিরাজ আজ মহারাজ জি কা জো মহিমা সম্পূর্ণ পৃথিবী মে হি উনকা সৌরভ হৃদয় কা সৌরভ উনকা সৌষ্ঠভ উনকা সৌগন্ধ উনকা মহিমা জো সম্পূর্ণ বিশ্ব মে প্রকাশ হো রহা হে ইয়ে শ্রী গিরিরাজ মহারাজ কা হি কৃপা হে ক্যোঁকি একদিন মহারাজ জি নে ইসি গিরিরাজ গোবর্ধন जहाँ पर हम लोग अभी भगवत कथन श्रवण कर रहे हैं गिरिराज एक दिन श्री गुरु जी यहीं पर भी श्री गिरिराज की बड़े कठोर रूप में यहीं पर रह कर किसी तरह से थोड़ी माधुरी लेकर बड़े कठोर साधन में जा रहे हैं गिरिराज की महिमा गिरिराज की कृपा के द्वारा भी आज गुरु जी की इतने सारे महिमा है इसलिए हमारे संप्रदाय में गिरिराज की बड़ी महिमा है गिरिराज की वंदना के बगैर कोई भी राधा कृष्ण की सेवा की प्रेम और राधा कृष्ण की प्रेम सेवा को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं उद्धव जैसे व्यक्ति होते हुए ब्रज में आकर के जब ब्रज गोपियों की सर्वोत्तमता को दर्शन किया, उन्होंने सोचा कहाँ पर मेरी अभिष्ट पूर्ति हो सकती है। तब उन्होंने देखा गिरिराज की कृपा के बगैर हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए गिरिराज भी आकर के उद्धव भी आकर के श्री गिरिराज चलने में ही उद्धव कुंड पर एक हाथ बन करके उन्होंने बदल दिया। नारद की जब वे परमा से शंकर जी से अष्टकाय लीला गोपी प्रेम की सर्वोत्तमता को समझे, उन्होंने आकर के कहां पर साधु बदल किया, श्री गिरिराज चले जी ने श्री नारद कुंड पर भी उन्होंने साधन बदल किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे अति हो जाती मैं जेरी फतेह देती उन्होंने प्रार्थना किया गया निज निकट निवास देखी गोवर्धन को सलवा हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके आपका श्री चरण में ही तरह की व्यक्ति हमें आश्रय दी। सनातन गोस्वामी सखद लवन में देख होते हुए भी प्रत्यह आकर के श्री गिरिराज गोवर्धन को प्रत्यह आकर के परिक्रमा करके यहाँ से पैदल तक भद्रा से तक वृंदावन जाया करते थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी विश्वनाथ कवि ठाकुर और जितने जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी जितने सारे गोस्वामी हो गए सब के सब गिरिराज चरण में आकर के उन लोग ने भजन किया, क्योंकि इनका नाम गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन है। कहते गिरिराज गोवर्धन क्या महिमा है, अभी महाराज श्रवण कर रहे थे कैसे स्वयं कृष्ण जब स्वगत वृंदावन से ये विश्व मध्य जगत में पधारने के लिए श्री राधा रानी को बोले हे राधे मैं ये मध्य जगत में जाना चाहता हूँ इसलिए मेरे साथ में तुम्हें जाना पड़ेगा। राधा रानी बोली मैं बेच जाने वाली नहीं हूँ, अगर जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं जहाँ पर यमुना नदी नहीं जहाँ पर श्याम कुंड राधा कुंड नहीं जहाँ पर द्वादश वन नहीं जहाँ पर नंदगांव दशहरा नहीं मैं वहाँ नहीं चलती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा हे आगे मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, जाते समय पूरा बोलो तो वृंदावन में जो पूछो वो सबके सब ही मैं उतार दूंगा। इसलिए इस जगत में हम जो भी देखते हैं ये सबके सब सखाद गोलोक का विभुज जैसी संपूर्ण रूप में इसी जगत में उतर आया है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन जैसे कि साधारण रूप में सुनने के लिए लगता है द्रोणाचार्य का पुत्र है रामचंद्र सेतु बना रहे थे इसलिए, लेकिन तत्वतः ये गिरिराज गोवर्धन सखाद गोलोक वृंदावन से ही इसी जगत में आए हुए हैं। इसलिए किसी समय राधा कृष्ण विहार करते करते वो सोच रहे हैं हम लीला करने के लिए मध्य जगत में जाएंगे, ऐसे एक लीला स्थली होनी चाहिए जो कि हमारे लीला की उपकरण के सारे वस्तु हो, जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल हो, जहाँ पर जितने तरह का पुष्प हो वहाँ पर मिले, जितने तरह का फल वहाँ पर मिले, जितने तरह का झरना, जितने तरह का एक साथ पीछे ऋषि एक साथ बहे, जहाँ पर पृथ्वी का सर्वोत्तम लीला की कोई स्थली होनी चाहिए। उसी समय स्वयं राधा रानी अपना हृदय से ही ये गिरिराज गोवर्धन को कृष्ण अपना सर्वोत्तम लीला स्थल रूप में अपना हृदय से श्री गिरिराज गोवर्धन को स्वयं ईश्वर जी हृदय से प्रकट करती है। इसलिए राधा नाम मन सजात ये राधा रानी के मन से ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम गिरिराज है। कहते गिरियों में जो सर्वश्रेष्ठ है तब एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने भगवान राधा कृष्ण की कठोर तपस्या की। जब भगवान संतुष्ट हुए कहते क्या चाहते हो, तो बोले हम आपकी चरण की हम सेवा चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने श्रवण किया ब्रह्मा स्वयं जब कृष्ण का गोवत्स हरण करने का बाद उन्होंने जब पता चला कि कृष्ण है सखा भगवान तो उन्होंने क्या प्रार्थना किया, इसलिए उन्होंने गोकुल का बाहर जहाँ पर साधारण लोग रहते उनका चरण की धूल पाने के लिए प्रार्थना किया, इसलिए स्वयं ब्रह्मा तो यहाँ पर वर्धना रूप में प्रकट हुए। स्वयं शंकर जी
वो भी भगवान का रास दर्शन करने के लिए वो भी स्वयं गोपी बन के आए, इसलिए उन्होंने कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने पर्वत रूप में श्री नंदीश्वर पर्वत नंददाम रूप में प्रकट हुए। और स्वयं भगवान विष्णु भगवत सेवा प्राप्त करने के लिए विष्णु स्वयं के विराट गोवर्धन रूप में प्रकट हो गए, इसलिए स्वयं के जगत का जो सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को तीनों भगवत सेवा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पर्वत रूप से प्रकट हुए। राधा कृष्ण की सेवा और उसका दर्शन उनको सेवा मिले, इसलिए गिरिराज का जो एक स्वरूप कहीं साक्षात भगवान विष्णु और दूसरे स्वरूप में कहीं श्री गिरिराज गोवर्धन की साक्षात भगवान कृष्ण है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को जब वो ब्रज में भेज रहे थे उसी समय उन्होंने दो चीज दिया, एक तो उन्हें गिरिराज सिला दिया, बोले रघुनाथ ये गिरिराज गोवर्धन ये गिरिराज सिला ये साक्षात कृष्ण और ये जो गुंजा वाला कहीं साक्षात राधा है, इसे चैतन्य महाप्रभु का विस्तृत वाक्यों द्वारा कहीं गिरिराज गोवर्धन को कहीं साक्षात भगवान कृष्ण है, एक स्वरूप श्री साक्षात कृष्ण स्वरूप है और दूसरे स्वरूप ब्रज गोपिया राधारानी क्या बोलती है कि धन पाए अद्भुत अबला हरिदास वर्ज्य, इनको राधारानी स्वयं इनको हरिदास वर्ज्य बोल करके बताए, इसलिए महाराज बता रहे थे हरिदास तीन है, एक हरिदास तो हुए युधिष्ठिर महाराज, दूसरे हरिदास हुए हमारे उद्धव जी और ये हरिदास हुए हमारे युधिष्ठिर महाराज, हरिदास द्वार हुए उद्धव जी और हरिदास वैद्य बन हुए श्री गिरिराज गोवर्धन, ये हरिदास वैद्य है क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को जो रस है वहां तक वहां उनका जो रस केवल सत्य और वात्सल्य को भी गौरव सत्य वात्सल्य खोलती है और उनको ऊपर में उद्धव जी को कृष्ण स्वयं ब्रज में भेजे जो कृष्ण का सखा और उन्होंने श्रृंगार रस की थोड़ी सी उनको केवल जन्म कर केवल उनका महिमा को समझे, लेकिन यदि गिरिराज गोवर्धन है यदि हरिदास रजय है क्यों यदि इनकी कृष्ण लीला में महाराज कभी बताए कि ये हरिदासी भी है, कहते क्यों कहते भगवान कहते प्रबल मदर लीला चंद्र कंदराते रजय से नवजुग दो नमस्मिन मंदम, जो भगवान को गिरिराज गोवर्धन ने जो उन्होंने मधुर से मधुर लीला उन्हें जो दिव्य रास रचाया बासुकी रास किया कुंज कुंज विहार किया जल विहार किया नौका विहार किया मधुपान किया जहाँ पर झूलन लीला की जहाँ पर संपूर्ण श्रृंगार रस की नदी की बाढ़ जहाँ पर उन्होंने बहा दिया, किसको सामने ये लीला हो सकती है केवल किसी पुरुष को सामने नहीं हो सकती है, केवल अगर कोई दासी हो हाँ उनको सामने नहीं लीला हो सकती है, इसलिए एक स्वरूप में गिरिराज गोवर्धन हरिदास भी है और एक हरिदासी भी है, यदि जड़ का रूप क्यों प्राप्त किया यदि गिरिराज का पत्थर रूप में गुरु जी बताते हैं इसका कारण है भगवान इसे मधुर से मधुर जो पुंज लीला श्रृंगार लीला रास लीला दिव्य लीला यदि ये लीला किसी पुरुष को सामने होना बहुत कठिन है, इसलिए मानो श्री गिरिराज गोवर्धन स्वयं चर कैसे बन गए, जब जो चर बन जाए उनको सामने भले ही जो कुछ लीला हो हाँ उनको फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए किसी को जड़ता प्राप्त करके राधा कृष्ण का मधुर से मधुर लीला हो इसलिए वो जड़ता प्राप्त किया कर ये कारण है, दूसरा कारण जड़ता कहते स्वयं स्तंभ असुरकुल वर्ण उसमें स्तंभ है प्रेम मानो श्री गिरिराज गोवर्धन कृष्ण ये मधुर मधुर जब लीला करते हैं उसी समय भगवान का चरण स्पर्श राधा कृष्ण की दिव्य लीला की दर्शन प्राप्त करके मानो श्री गिरिराज गोवर्धन स्तंभ जैसे पत्थर जैसे गिरिराज गोवर्धन बन गए, क्यों उनको लीला में के स्तंभ है, इसलिए बहुत सारी कारण से श्री गिरिराज गोवर्धन यहाँ स्तंभ रूप में पत्थर रूप में हुए हैं, इसलिए इनका नाम गिरिराज इसलिए इनका नाम गोवर्धन है, गिरी में राजा तो जैसे भगवान है इनका नाम गोवर्धन है, वो मतलब होता है इंद्रिया अब वर्धन मतलब होता है इंद्रियों को जो बढ़ाते हैं और इंद्रियों को जो सेवा करते हैं, इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की बहु रूप में सेवा करते हैं, इसलिए गिरिराज और गोवर्धन कृष्ण जो आते हैं उनके लिए आसन बाल्य आसमान और पंचामृत द्वारा गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर पंचामृत द्वारा कृष्ण से बात करते हैं सुंदर रूप में पंचामृत से दूध दही फल इसको द्वारा गिरिराज गोवर्धन ने गन्ना उपलब्ध है यहाँ पर मधु उपलब्ध है गैया घास का अगर दूध देते हैं उसमें दूध नहीं बनती है और पानी का झरना भी नहीं है और भगवान जब गिरिराज गोवर्धन में आते हैं उनका चरण स्पर्श पाकर मानो गिरिराज की रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वहां पर झरना है कभी झरना नहीं कृष्ण का चरण स्पर्श पाकर के प्रेम में ऐसे उतावला हो जाते हैं जिनको आंखों से आंसू की झरी बह रही है और उनका चरण स्पर्श गैया की सेवा इसलिए संपूर्ण गो मतलब होता है संपूर्ण ब्रजवासी गैया गो सब वर्धन मतलब गिरिराज गोवर्धन की सभी ब्रजवासी कृष्ण एवं काशना ये दोनों की उन्होंने सेवा पूर्ण की है इसलिए हर दृष्टिकोण से श्री गिरिराज गोवर्धन सर्वोत्तम है इसलिए गिरिराज की महिमा के द्वारा ही कृपा के द्वारा ही हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है इसलिए हम लोग श्री गुरु जी का आदर में श्री गिरिराज गोवर्धन में आए गुरु जी हम लोगों पर भी कृपा करें हम साधु में भक्त कामना होना चाहिए गुरु जी कृपा करें जैसे श्री गिरिराज गोवर्धन से केवल भगवत प्रेम और उनका चरण की सेवा ही हम प्राप्त करके राधा कृष्ण की सेवा में हम निवेदन कर सकते
रसानंदपुर ने बताया कि यह हरिदास भी है हरिदासी भी है और बताया कि राधा के मन से
और वही नहीं ये भगवान भी है
तो बताइए इसमें लीलाएं हैं मनुष्य के समय लीला नहीं हो सकती है नित्य लीलाएं हैं मनुष्य के समय नहीं हो सकती है इसलिए गिरा जो दासी है तो ये हो जब वृंदावन में रास बचे या कृष्ण ने जो सारी जो रास लीला हुई थी उनको वृंदावन का वृंदावन ही कहा जाएगा क्या और दूसरी बात है गिरिराज है तो उनको श्री रानी कहा जाएगा तीसरी बात है जब उड़ीसा जब जाते हैं तो जमीन क्यों चलाते हैं
प्रारंभ हो जाता है इसलिए कवि जयदेव जी ने राधा माधव जयंती कर दिया बोले राधा जी का प्रारंभ क्यों कर दिया पहले मंगला चरण में बोले की राधा जी के बिना सिंगारस होता ही तो इसलिए पहले राधा जी मंगल चरण में लौटना है तो ऐसे जहां नहीं आ रहा है ये तो सभी सिंगारस के बल
और गिरिराज दासी हो तो वृंदावन को क्या वृंदावन ही कहा
गया क्या राधा जी के मन से निकले हैं
ये तो कहा गया मनसा प्रकृति जातो गिरि गोवर्धन महान प्रकृति के मन से जैसे ललिता दिशा का रविंद्र प्रगति कार्यक्रम है वो लोग नाम भी ऐसे है ये तो प्रकृति शक्ति है तो ये बताया व्यासदेव जी ने भविष्य पुराण में अधिकर हमारे भक्ति में ठाकुर जिनको गोदाधर का अवतार है और सप्तमी अष्टमी वो कह रहे हैं कि गोदाधर पूर्व प्रकाश
सबको सामंजस्य करके सबको ही बातें मानी जाए राधा जी के मन से प्रकट हुए सभी भी है उनके दास भी है भगवान के स्वरूप भी है वैभव प्रकाश भी है सब प्रकाश से
बताए उद्धव के बाद नंबर आपकी गोपियों की भक्तों ने जो पांच स्तर का वचन बताए इसलिए लास्ट में केवल नंबर आपकी गोपियों की शुरुआत फिर उसको वक्त नहीं होते हैं इसलिए उद्धव को प्रेमाशुल भक्त उसका जो केवल
नंबर इसलिए
केवल गोपियों की नंबर इसके बाद नंबर आती
है समय करो सुनो
ठीक है।
स्मरण करो की।
पादम महाराज की जय।
So Srila Guru has said, which was not spoken for me, was not translated, that when Sri Krishna desired to come in his world, then he said to Srimati Radhika, "Oh Radhika, I desire your parent Gokul, you should come with me." So Srimati Radhika said, "I cannot go to that place where there is not Yamuna, where there is not Diviraj Govardhan, where there is not the forest of Vrindavan." Therefore Krishna arranged that all the paraphernalia of Rajananda should appear here in Vrindavan. So we heard from Pujapati, Padmanabha Maharaj and others, how Giriraj, even though he is the eternal associate of Sri Krishna, because of Nalabhadila, he appears as the son of Jodachal, that is one appearance, and perhaps in another yuga, he appeared, he was carried here by Sri Hanumanji. So Sri Brahma, Sri Vishnu and Mahesh, the three main devatas, performed hard austerities to achieve the service of Sri Krishna. So we have heard already that Sri Brahmaji, after being bewildered by Sri Krishna's maya, and seeing the opulence and the sweetness of Rajanananda and Sri Krishna, that he prayed, Tadbhuri Bhadyam, Yajanmahata Bhadya Gokulapi Katamangri Yajogi Shakam. That Lord Brahma prayed to take birth anywhere in Rajanananda, even though his stone, Yastudikaman Bhagavan Gurudas, to achieve the Buddhas and the Vrindavasis, especially the gopis on his head. So, of all the gopis, the topmost is Srimati Radhika. Therefore, Brahmaji had that desire. Therefore, he took birth on in Varshana. So, that hill where Vrishabhanu Maharaj's palace, the present Sri Mandir, is situated, that hill is called Brahmaparva. So, Brahmaji, he also took birth here as one mountain. Then Lord Mahadev, he also took the benediction. He will also enter the pastimes of Krishna. So Nandagaon is situated on one hill. That hill is called Nandishwar Parvat. It's a direct incarnation of Lord Shiva. Then Sri Vishnu, even though he is Bhagavan himself, but to achieve the service of Swayam Bhagavan Sri Krishna, he also took the benediction. Then he appeared here as Sri Giriraj Maharaj. Therefore, Sri Rasnagaru said, one Swarup of Giriraj is Sri Vishnu. And of course, in the pastime of Nithya Govardhan for 7 days and 7 nights, that time he appeared. That time, Sri Krishna directly showed up directly with another Sri Krishna himself. But the gopis have also described, a gopika abhulvita or haridasa vajra. Another Swarup has been described by the gopis in Srimad Bhagavatam. Who is Giriraj? He is Haridasa Bhajo. He is the best servant of Sri Hari. Therefore, there are three Haridasas. The first is Sri Yudhisthira Maharaj. The second and superior to him is Haridasa Bhajo, Sri Udhavji. And superior to all of them is Sri Giriraj Maharaj. He is Haridasa Bhajo. Why is he superior? Because in Radhakund, even Yudhisthira Maharaj took birth there as one tree to perform Bhajan of Krishna under the guidance under the shelter of Giriraj Maharaj. And Uddhav, Asamaham Chanamalayu Jusamaham Sham, Uddhav took birth at the feet of Giriraj as a blade of grass. Therefore, the other two Haridasas both take shelter of the Haridasa Bhajo, Sri Giriraj Maharaj. Then, how Giriraj, his name is Govardhana. Then, Gov has many.